अगली चीज़ पे चलते हैं, सफ़र के आदाब और मुस्तहिबात। मुस्तहिबात कहते हैं रिकमेंडेशंस को, पसंदीदा चीज़ें और कुछ मसनून दुआएं। इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें हम अहादीस की रोशनी में इधर देखते हैं। और ये भी याद रखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे जो खूबसूरत सा दीन दिया है ना, इसमें किसी भी चीज़ से हमें महरूम नहीं किया, ठीक है? चाहे वो आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो हम इसको 3 स्टेप्स में लेंगे। सबसे पहले हम सफ़र शुरू करने से पहले के आदाब को लेंगे, क्योंकि कोई भी काम जब करना होता है ना, तो उसके शुरू करने के लिए इंसान को कुछ पहले से तैयारी की हो तो काम अच्छा होता है। और ये एक जुमला हमेशा लिख लें, और जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं हमारे साथ माशाल्लाह, उनको तो मैं अभी से ये बात कह दूंगी कि शुरू से ही ये जहन में रख लीजिए कि तैयारी के साथ किया हुआ काम तैयारी के बगैर किए हुए काम जैसा नहीं हो सकता। कुरान भी कहता है वाइद लहू मस्तता, तुम तैयारी उतनी करके रखो जितनी करने का हुक्म है। तो सफ़र शुरू करने के आदाब से पहले नंबर एक, सफ़र की नियत करना। जब सफ़र का इरादा हो तो दिल में नियत कर लीजिए। अब आप देखिए कि एक ही सफ़र है, लेकिन आपकी 2, 3, 4 नियतों की वजह से वो मल्टी पर्पस किस्म का आपके लिए सदका जारिया हो जाएगा। यानी जायज़ और मुबाह सफ़र भी इबादत बन जाता है। आप काम सफ़र था, रिकमेंडेड है, कोई बात नहीं, गुनाह नहीं है, सवाब नहीं, लेकिन आपकी नियतें अच्छी हो सकती हैं, आप वो कीजिए। मसलन आप देखिए कि एक से ज़्यादा नीते क्या है कि आप, मिसाल देती हूँ आपको कि आप पाकिस्तान जाते हैं, कोई सिस्टर है वो इंडिया जा रही है बैक होम, चले ये तो दूर के सफ़र है ना, आप यहाँ से पेरिस जाते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, तो आप का अपने किसी काम से ही जाएंगे ना। हमारे कल्चर में तो एक बड़ी मारूफ सी बात है वो ये कि जी शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो एक नियत होती है ना, यानी ये तो वो ज़रूरत होती है ना जिसको हम करेंगे। लेकिन अगर आप अपने उस सफ़र के अंदर नंबर एक लिखिए, आप ये नियत करें कि दीन की बातें सीखने और दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये सफ़र कर रही हूँ, घर से निकलने से लेकर जब मैं वहाँ पहुँचूँगी जहाँ जाने के लिए गई हूँ, तो वहाँ मैं हर मुमकिन तरीके से लोगों को बेहतरीन तरीके से दीन की बात बताऊँगी। फिर दूसरी नियत आप अपने साथ क्या कर सकते हैं, और वो क्या है कि मैं दीन की बातें सीखूँगी भी, तबलीग के लिए सफ़र करना है। अगर कहीं शरई जिहाद हो रहा हो तो जिहाद में शिरकत की नीयत से सफ़र किया जा सकता है। इसी तरह बाज़ जगह आता है कि सेहत हासिल करने के लिए सफ़र करना, चेंज, जस्ट फॉर चेंज। एक रिवायत है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, अल्लाह के नबी ने फरमाया साफिरू तसेखू वग़ज़ू तस्तगनू, यानी तुम सफ़र करोगे तो सेहतमंद रहोगे। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 8949 के, सफ़र करोगे तो सेहतमंद रहोगे, और तुम अगर गजवा करोगे अल्लाह के रास्ते में निकलोगे तो गनी हो जाओगे। यानी ये वो सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। फिर उसके बाद सफ़र करो और सेहत हासिल करो, जिहाद करो और गना हासिल करो। इसी तरह मुसलमानों की मदद की गरज से कोई सफ़र किया जा सकता है, हज और उम्रे की नीयत से सफ़र किया जा सकता है। फिर हज या उम्रे की नीयत के बाद कोई मसाइल दरियाफ्त करने हैं। और एक तो बहुत ही प्यारी बात है, किसी शख्स से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत हो उससे मिलने के लिए सफ़र कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी को अल्लाह की मोहब्बत में मिलता है सफ़र करता है, तो वो जब जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है उसमें। बिल्कुल इसी तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अल्लाह सुबहाना ताला की रहमत और उसके हुक्म से हमारे लिए अल्लाह ताला ने तैयार की हैं। फिर दूसरी बात ये है कि अल्लाह ना करे कोई बीमार है, उसकी बीमार पुरसी के लिए चाहिए, कोई फौत हो गया ताज़ियत के लिए चाहिए। फिर एक और नियत आप कर सकते हैं, वालदैन या उनमें से कोई एक ज़िंदा हो तो उनसे मिलने और इनकी खिदमत के लिए सफ़र कीजिए। हर नेक और हर बुराई से बचने की नीयत से सफ़र करना, ये मैंने आपको 15 छोटी छोटी नियतें बताई हैं, आप इसमें कोई एक दो भी लिख पाएँ तो इट्स फाइन, लेकिन जब भी कभी सफ़र करें तो ये चीज़ें सामने रखिए। और कामयाब सफ़र किसको कहते हैं? इमाम शाबी कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुल्क शाम के एक कोने से मुल्क यमन, यानी एक एक कोने में और एक दूसरे में, मुल्क यमन तक के दूसरे कोने तक सफ़र करके एक ऐसा कलिमा याद करे जो हिदायत पर इसकी रहनुमाई करे या इसे बुराई से बचाए, तो इसका सफ़र रायगा नहीं हुआ। यानी पूरे सफ़र में कोई एक बात आप सीख लें, सिर्फ एक कोई अच्छी बात, तो आपका वो सफ़र कामयाब हो गया, आप उसमें नाकाम ना हुए। फिर पहली चीज़ मैंने अभी तक आपको एक ही बताई है, सफ़र शुरू करने से पहले के आदाब क्या हैं, नियत कीजिए। और नियतें मैंने आपको तकरीबन 15 बोली हैं, आप इसमें 10 और भी लिख सकते हैं। मैंने तो आपको सोचना सिखाया, बीमार की आदत के लिए, किसी की मदद के लिए, माँ बाप को मिलने के लिए, किसी की वाकई खुशी है और उसमें अल्लाह की नाराज़गी नहीं तो उसके लिए, या कुछ और। हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, आप इसको ज़रा एक साइड पे कर दीजिए, हम अमूमन पैसे लगाकर टिकट खर्च करके जाते हैं और गुनाहों में शामिल हो जाते हैं, और फिर बहुत इसराफ़ और तबजीर भी होती है, दिखावा भी होता है, रिया भी होती है। अल्लाह ताला हमारे सफ़रों में खैर डाल दे। दूसरी चीज़, मशवरा करना। सफ़र शुरू करने से पहले मशवरा कीजिए, ये मुस्तहब है। अल्लाह के नबी साथियों से मशवरा करते थे, हालांकि आपको खुद भी पता होता था चीज़ें, आपको तो वही की रोशनी थी आपके पास, फिर भी अपने साथियों से मशवरा करते थे। और मशवरा किससे करें, जो उस फील्ड का माहिर हो, जो काम आप करने जा रहे हैं, प्लस जिसके इल्म और अमल में उसकी दीनदारी, अमानत, दयानत और तजर्बे पे आपको मुकम्मल एतमाद हो। अल्लाह के नबी की सुन्नत है, कुरान क्या कहता है आपको, अगर आप सूरत आले इमरान 159 देखें, वशाविर हुम फिल अमरी, मशवरा कीजिए इनसे कामों में भी। गज़वे उहद के तनाजर में जब सहाबा से एक ख़ता हो गई, तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि अब ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ दें, वापस इनसे दोबारा बाकी कामों की तरह मशवरा भी करते रहिए। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अनस की रिवायत है, मा खाबा मन इस्तखारा, वो कभी भी नाकाम नहीं होगा जिसने इस्तखारा कर लिया, वला नदीमा मन इस्तशारा वला आला मन इक्तसद। पहली चीज़ क्या थी, मा खाबा मन इस्तखारा, जिसने इस्तखारा किया वो कभी नाकाम नहीं हुआ। दूसरी चीज़, वला नदीमा मिनल इस्तशारा, जिसने मशवरा किया वो कभी भी पशेमान नहीं हुआ। और वला आला मन इक्तसद, जिसने दरमियाना रवि इख्तियार की वो फ़कीर नहीं हुआ, यानी जो लिमिट्स के अंदर रह के खर्च करता है। और ये रिवायत आपको जामे सगीर की है और बहुत सारी किताबों में मिलेगी, मैं बहुत रेफरेंस नहीं दे रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो बातें बता रही हूँ हदीस की रोशनी में बता रही हूँ। अब इससे क्या पता चला कि इंसान को मशवरा करना चाहिए। अब इस्तखारा करना पहले की बात है ना, इस्तखारे का तरीका क्या है, बहुत आसान। हमारे कल्चर में लोगों ने किस तरीके से मशवरे को एक किस्म का गैब जानने का तरीका समझ लिया है। बाज़ लोग डरते हैं इस्तखारा करते हुए, नहीं पता नहीं क्या दिख जाएगा, कोई कहते हैं इस्तखारा निकालना है, भाई कहाँ से निकालना है अपने। सीधी सी बात है, दिन रात का कोई ऐसा वक्त जब नफिल या कोई सजदा करना मकरूह ना हो, ममनू ना हो, आप वजू करके 2 रकत नफिल पढ़ें और अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरु कभी इल्मी का वस्तकदिरु कभी कुदरती का वसअलुक मिन फ़दलिक अलअज़ीम फ़इन्नक तकदिरु वला अक़दिरु वतअलमु वला आलम वअंता अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा फ़इन कुंता तअलमु अन्ना हाज़ल अमर। अब हाज़ल अमर में आप कह सकते हैं अन्ना हाज़ल सफ़र, ये काम अमर मैंने, यहाँ सफ़र है हमारा, हाज़ल अमरु उसका नाम लीजिए, खैरुल ली आजिली अमरी व आजिली ही, या फिर कहा जाए औफी दीनी व माशी व आकिबती अमरी फ़खदुर हुली व यस्सिर हुली सुम्मा बारिक ली फी व इन कुंता तालमु अन्नहु शर्रुली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी। और इसी तरह दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, फी आजिली अमरी व आजिली ही फसरिफनी अनहु वसरिफ़ु अन्नी वक्दुल खैरु खई सुकाना सुमारदिनी भी। थोड़े बड़े लफ्ज़ों के फ़र्क से मुख्तलिफ अल्फाज में मौजूद है, आपको जो भी दुआ याद है वो ठीक है, कोई इतना परेशान होने की नहीं है बात। हाँ इसमें है क्या कि अल्लाह मैं तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ, यहाँ लिख लीजिए, इस्तखारा करना खैर मांगना है। इस्तखार अलिफ सीन तार भी में किसी भी फेल से पहले लगता है ना, तो टू सीख तलब, और खारा में खैर, खैर तलब करना, इस्तखार एक अमानी के खैर तलब करना। तो अल्लाह मैं तुझसे तेरी कुदरत के जरिए कुदरत तलब करता हूँ, मैं तुझसे तेरा फजल अजीम मांगता हूँ, यकीनन तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू तमाम गैबों का इल्म रखने वाला है। इलाही, अगर तू जानता है कि ये काम जिसका मैं इरादा रखता हूँ मेरे लिए, मेरे दीन और मेरी ज़िंदगी और मेरे इंजामे कार के लिहाज से बेहतर है, इसे मेरे मुकद्दर में कर दे और आसान भी कर दे। फिर इसमें मेरे लिए बरकत अता फरमा, और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए और मेरे दीन और मेरी ज़िंदगी और मेरे इंजामे कार के लिहाज से बुरा है, तो इस काम को मुझसे और मुझे इससे फेर दे, और मेरे लिए भलाई मुहैया कर जहाँ भी हो, फिर मुझे इसके साथ राजी कर दे। बिलीव मी, अगर वो काम खैर का है तो आप कर लेंगे, और अगर खैर नहीं है ना, अल्लाह खुद ही उससे अच्छी कुछ चीज़ सामने ले आएगा। बहुत प्यारी सी दुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी एक दुआ मिलती है, बहुत कम लोगों को पता है, यानी ये लंबी लगे या वक्त नहीं या किसी वजह से नफिल नहीं पढ़ पाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक से एक रिवायत आती है। क्या कहते हैं? अन्न नबी कान इजा अराद अमरन काला, आप मेरे साथ पढ़िए, बल्कि अल्लाहुम्मा, आपकी बात रिकॉर्ड तो नहीं होंगी लेकिन एटलीस्ट आपकी बात आपको समझ आ जाएगी। अल्लाहुम्मा खिर ली वख तर ली, खैर है ना चुनना, ए अल्लाह मेरे लिए, यानी क्या है, या अल्लाह मेरे लिए आप सही रास्ता चूज कर दे और मेरे लिए आप इंतखाब फरमा दीजिए। याद कीजिए हजरत मूसा की दुआएं, मिस्र से मदियन गए, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, रब पे डाल दिए नीली मांजल तेलई यमिन खैरिन फकीर, ऐ मेरे रब मैं तो तेरी तरफ से हर खैर ही का ज़रूरतमंद हूँ। बहुत सारी चीज़ें उस दुआ की तफसीर में, इंशाल्लाह आपको दुआएं भी सिखाऊंगी तो उसमें आप ये भी दुआ सीख लीजिएगा कि अल्लाह खैर के रास्ते मेरे लिए खोल दें। अब मेरे से एक कत्ले ख़ता हो गया, अब मुझे कोई नेकियों के रास्ते दिखा ताकि मैं उस सुन्नत पे अमल कर सकूं कि जब तुमसे कोई गलती या ख़ता हो जाए तो उसके नीचे नेकियां लगा दो ताकि वो ख़ता और गुनाह तुम्हारा धुल जाए। तो क्या पता चला? अल्लाहुम्मा खैर ली वख्तर ली, छोटी सी दुआ है, और ये तिरमिज़ी की रिवायत है 3516, और अबू दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है 4832 नंबर की। तो ये तो ज़ुबानी ही आपको मुझे याद हो सकती है, दोहराएंगे ज़रा। अल्लाहुम्मा खैर ली, बोलिए, वख्तर ली, पहले खिर और फिर वख्तर ली, ठीक है, दोबारा लिया। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, चार कह रहे हैं या तीन कह लीजिए, रफी के सफर का इंतहाब। गाड़ी जो भी हो, रंग उसका कुछ भी हो, वेल व्हील यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, या वो मर्सिडीज है या BMW है या सुजुकी है या खटारा है, सबसे अहम ये है कि आपके साथ कौन है। याद रखिए रफीके सफ़र इतना अहम है, टूटी फूटी गाड़ी में भी लोग गुनगुनाते हैं, हंसते मुस्कुराते कुरान की आयतें पढ़ते हुए जा रहे होते हैं, और BMW छोड़े उससे भी कोई बड़ा नाम होगा, फरारी भी होगी, पोर्श भी होगी, और जो भी गाड़ी हैं उसमें भी लड़ते बढ़ते देखे हैं। तो रफीके सफ़र का इंतखाब कीजिए, अच्छा सफ़र, नेक शख्स, सवाले शख्स। अल्लाह के नबी की एक रिवायत है, ये जो मैंने पहले आपको रिवायत बताई थी ना वो तिर्मिज़ी की थी, अब जो रिवायत है वो अबू दाऊद की 4832 है। आपने फरमाया ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, मोमिन ही को अपना साथी बनाओ, वला याकुलु तामका इल्ला तकीयुन, और तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी खाए, यानी तुम खाने खिलाओ उन लोगों को कि जो खाएं और नमाज भी ना पढ़े मगरिब की। 500 हज़ार बंदे को शादी में आप खाना खिलाते हैं, उन 500 में से 50 लोग भी उठ के नमाज नहीं पढ़ते इल्ला माशाल्लाह, तो आपका खाना ज़ाया हो गया। नेक लोगों को खिलाइए और नेक ही के हाथ से भी खाइए, खाने की एक तासीर होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमिन को रफीके सफ़र बनाना चाहिए। इसी तरह एक और रिवायत अबू दाऊद में है 4833, अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रजुलु अला दीनि खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, बस तुम में से हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। अब आप अपने बच्चों के बारे में भी परेशान रहते हैं, इनके अच्छे दोस्त हों कैसे हों, तो आप भी देखा करें कि दोस्ती आप किससे करके और करवा रहे हैं। इसी तरह वो हदीस आप सबको तकरीबन आती होगी कि मसलु जलीस साल ही, कि एक अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी फूंकने वाले और खुशबू बेचने वाली है। सबको आती है ना वो रिवायत, अच्छी दोस्ती किसकी है जो खुशबू बेचने वाला है, बार बार शीशी खोलेगा उसमें से खुशबू आएगी, हो सकता है किसी वक्त वो आपको कुछ दे दे, कभी आप उससे खरीद लें, नहीं भी है तो चलो साथ बैठे खुशबू तो आएगी ना। और दूसरा जो है वो भट्टी वाला है, आग उड़ाकर कपड़े जला देगी, नहीं है तो उसकी बदबू तो बंदे को मिलेगी। ये सही बुखारी की रिवायत है 276 जिल्द 3 में। तो क्या पता चला, अच्छे साथियों का इंतजाम के। आप देखिए जो बार बार लोगों को मैसेज आता है ना कि उम्रे पे साथ चलें, मिलके चलें, इस पे भी एक बात ज़हन में रखिएगा, जहाज़ वही होते हैं, सीटें वही होती हैं, सब कुछ वही होता है, लेकिन साथ क्या है। मैं आप में से जो लोग हमारे साथ जा रहे हैं, आपसे कोई बड़े लंबे चौड़े वादे तो नहीं कह सकती, अल्लाह आपके लिए बहुत इच्छा करे, लेकिन ये मेरा यकीन है कि आप उस सफ़र के बाद इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये ज़रूर कहेंगे कि हमने ये जितनी एफर्ट की। कई लोग आपको पता है कि अपनी छुट्टियों को चेंज करके, कई लोग अकेले जाने की बजाय इकट्ठे जा रहे हैं, हमने बहुत नफ़े का सौदा किया, क्योंकि वो इल्म और उम्रे का सफ़र है। आजकल तो उम्रे पे जाना कोई मुश्किल भी नहीं है, टिकट कटाओ, वीज़ा लगवाओ, जाके चले जाओ, खुद ही होटल ले लो, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो साथ, वो एक पूरा वक्त एक बंदे को फीलिंग आए, वो कितनी खूबसूरत होती है ना। तो ये जो सोहबत होती है ये बहुत कीमती होती है। आपको पता है माजी में हमारे सलफ सालेहीन उलमाए कराम से मिलने के लिए हज करने आते थे, वजह क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक ही तरीका था उम्मत मुस्लिमा का एक जगह यूनाइट होने का, वो हज और उमरा था। उमरा भी नहीं बल्कि हज। वहाँ कहाँ थे कि जहाज़ उधर बैठे तो उधर चले जाओ उस यूनिवर्सिटी में, और वहाँ उस दौर के उलमा नहीं जाते थे कहीं, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, वो एक कह लीजिए कि इल्म के वो ख़जाने होते थे कि लोग महीनों का सफ़र कर कर के उनके पास आके इल्म लेते थे। क्यों? वो कहते थे इस इल्म की कदर के लिए, अपने लिए नहीं, इल्म की कदर के लिए। उनकी लाइफ इतनी मोबाइल नहीं होती थी, आज तो सहूलतें भी हो गई, और वही बात है कि चले आप कुआं नहीं बनते, आप बादल बन के खुद देने चले जाइए, लोग फिर भी ले लें, लेकिन ये सच है कि आज इल्म जितना आम हो रहा है उतनी लोगों को इसकी कदर नहीं है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या है जो सफ़र से पहले डिसाइड की है करने की, तन्हा सफ़र की ममानियत है, इंसान अकेला ना करे। अरबी का एक बड़ा खूबसूरत सा मुहावरा सुनाऊँ आपको, अर रफीकु सुम्मत तरीक़ु, रफीक रास फा या काफ सुम्मा अत तरीक, तो ऐसे कहते हैं पहले रफीक के सफ़र तलाश करो फिर सफ़र पर रवाना हो। पहले बताएं साथ किसने जाना है, फिर डिसाइड करेंगे किधर जाना है। यानी रफ़ीक ऐसा हो जो दीन के मामले में उसकी मदद करे, अगर ये भूल जाए तो उसको याद दिलाए, अगर ये नाउम्मीद है तो वो उसको अमल की रग़बत दिलाए, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ यालमु नासु मा फिल वहदती मा आलमु मा सारा राकिबुन बिललैली वहदहू, अकेले सफ़र करने की जो बुराई मैं जानता हूँ, अगर लोग जान लेते तो कोई भी रात को अकेला सफ़र ना करता। जी बिल्कुल पसंदीदा नहीं है अल्लाह के नबी की ये बात, जो है आप जाके देख लिए, सही बुखारी में है, 2998 नंबर रिवायत का है। इसी तरह एक रिवायत है जो बहुत डराने वाली है, अर राकिबु शैतानु व रकीबानी शैतानानी व सलासतु रकब, अकेला सफ़र करने वाला एक शैतान है, दो सफ़र करने वाले दो शैतान है, तीन अफराद जमात है। अब आप पूछें क्यों, ये पहले हदीस का हवाला लिख लें, अबू दाऊद की रिवायत है 2907। ये क्या बात हो गई, समझिएगा, अकेला बंदा उसको असल शैतान पकड़ लेगा, डराएगा, जिन भूत आ सकते, इधर से उधर कोई खौफनाक चीज़ें उसके सामने आ सकती हैं। फिर इसी तरह से दो हैं तो कोई एक दूसरे का माल लेने के लिए उसको कत्ल कर सकता है, कोई खुदा ना हस और बेहूदगी गंदगी, कोई और जिनसी खराबी हो सकती है। जब तीन होते हैं ना तो शैतान डरता है। इसलिए कभी भी, और ख़ास तौर पे जंगलों के सफ़र और रातों के सफ़र या ओवर नाइट ट्रेवल जो है ना, उसमें कभी भी अकेले ना जाएं, और दो भी बहुत मुश्किल हो तो फिर हो, तीन लोगों के साथ शैतान फिर ज़रा दब जाता है उनसे। फिर पांचवी चीज़ है कि सफ़र की अब तैयारी करना, यानी सफ़र से पहले अपने सामान को तैयार कीजिए, यानी सफ़र से पहले की बातों के बाद अब हम अगले पे चलते हैं, तो वो क्या है, सफ़र की तैयारी कीजिए, मुनासिब तैयारी कीजिए, ज़रूरत का सामान तैयार करें ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना हो, और इसमें आपको अपनी हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि रास्ते में ज़रूरत हो सकती है, मसलन अल्लाह के नबी सफ़र में होते या घर में होते आराम के वक्त हमेशा आपके सरहाने सात चीज़ें रखी होती, तेल की शीशी, कंघा, सुरमेदानी, कैंची, मिसवाक, आईना और लकड़ी की छोटी सी एक सीख होती थी, उस दौर में इसकी एक ज़रूरत होती थी कि। और ये रिवायत आप नंबर नोट कर लीजिए, ये रिवायत आपको मिलेगी अलबाब रब फ़ी इस्तेमाली यानी ये हदीस में पूरी रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ये चीज़ें अपने साथ सफ़र में रखते थे, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ की रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। तेल नहीं लगाते तो ना रखिए, कोई बात नहीं है, सुरमा नहीं लगाते नहीं जो भी, लेकिन ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें पास होनी चाहिए। हर वक्त बाज़ारों में भी नहीं जाया जाता, और आजकल तो हम जाके होटलों से ले लें, स्टोर से ले लें, घर में जिधर जा रहे हैं होस से ले लें, लेकिन ये वो दौर थे कि घर से निकलते थे पता भी नहीं होता था वापस आना भी है कि नहीं लाना।